गुड मॉर्निंग, ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा के सभी गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी अपने बॉडी को फिट करने के लिए एक्सरसाइज प्राणायाम को एंजॉय कर रहे थे, एम आई राइट? और ऐसा आमतौर पर होता है कि एक्सरसाइज के बाद थोड़ी अच्छी नींद आती है, तो मैं समझती हूं आप थोड़ी देर के लिए निद्राजीत बन जाएंगे। कैन आई एक्सपेक्ट दैट? ओके, तो थोड़ा सा अटेंटिव होकर सुनेंगे। आप 3 दिनों से सुन रहे हैं, आज आपका 3rd डे है, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ओवरडोज हो रहा है? श्योर? ओके, तो आज का जो सेशन है पावर्स थ्रू राजयोगा। राजयोगा मेडिटेशन इज अ वंडरफुल टूल इन विच वी कनेक्ट द इनर सेल्फ विद द सुप्रीम पावर एंड एज वी अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ साइंस एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो द सोल बीइंग द लोअर पोटेंशियल व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द सुप्रीम सोल हु इज ओशन ऑफ लव peace, bliss, happiness, power, the connection has to be made. It doesn't happen automatically. The connection has to be made, but then the flow is by default. आप अपने cell phone को अपने adapter के जरिए सॉकेट में इंसर्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, ये आप मेहनत करते हैं, उसके बाद चार्ज होना ऑटोमेटिक होता है। ऐसे ही जैसे ही हम अपने मन को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के लिए थोड़े बहुत चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारी आउटसाइड बातें होती हैं जिसमें हमारा मन बिखरा हुआ होता है। हम उन सब बातों से मन को समेटते हैं और धीरे धीरे आपको हर सेशन के बाद 5-10 मिनट्स प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि अपने ध्यान को आप फोकस करिए मस्तक के बीच, और फिर हम उस सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और फिर हम रियलाइज करते हैं कि वहां से किरणें, रेज, पावर्स, वैल्यूज, वर्च्यूज, ये सब कुछ हमारे अंदर आ रहा है। एम आई राइट? दिस इज व्हाट द प्रोसीजर ऑफ मेडिटेशन। तो आज हम समझेंगे कि कौन से ऐसे पावर्स हैं जो हमें हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में चाहिए, ताकि हम अपने आप को बेहतरीन ढंग से मैनेज कर सके। कार्य क्षेत्र में जो बातें आती हैं, डिसीशन मेकिंग या डिस्क्रिमिनेशन वाली बातें आती हैं, हम उसको भी प्रॉपरली हैंडल कर सके, और जो सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं और आगे आने वाली हैं, ऐसा हम कोई भी कह नहीं सकते हैं कि हमारे साथ हमारे सारे सिचुएशंस हरदम फेवरेबल होंगे। कैन वी से दैट? नो। चैलेंजेस कभी भी आ सकती हैं, किसी को भी आ सकती हैं और कैसी भी आ सकती हैं, पर हम अपने आप को इतना एम्पावर कर लें कि कैसी भी चैलेंजेस आ जाए हम उसे फेस कर सके। और चौथी बात है कि हम अपने इंद्रियों को अपने वश में रख सके, बिकॉज जब कभी भी फोर्स में अथॉरिटीज की बात आती है, अधिकारियों की बात आती है, तो इतने सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनको मैनेज करना होता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हमने एक बात समझा कि जो व्यक्ति अपने ही इंद्रियों को, आंखों को, कान को, मुख को मैनेज नहीं कर सकते, उनको डिसिप्लिन में नहीं रख सकते, वो दूसरों को भी डिसिप्लिन में उस अथॉरिटी के साथ कदापि चला नहीं सकते हैं। इसलिए वो इंद्रियों पर संयम, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जो डायरेक्टली मेडिटेशन से हम अपने अंदर अचीव कर पाते हैं। तो देखते हैं कौन से वो पावर्स हैं जो हमें हमारे डे टू डे लाइफ में। इसके लिए प्रोसीजर, जैसे कि हमने बात किया, जोड़ना किसको है? मन को। किससे जोड़ना है? सर्वशक्तिमान से, परमपिता परमात्मा से जोड़ना है। और उससे हमें, वैसे पावर्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम ग्रॉसली कहेंगे वो अष्ट शक्तियां, जिसको हम नॉर्मली शक्तियों की देवी किसको बताते हैं? माँ दुर्गे को बताते हैं। और उनकी भुजाएं कितनी दिखाते हैं? 8 भुजाएं। तो ये 8 भुजाएं 8 शक्तियों का प्रतीक है, और वो 8 शक्तियों को हमें हमारे जीवन में अचीव करने की जरूरत है। तो उसमें वन बाय वन हम समझते जाएंगे। तो पहली शक्ति है पावर टू पैक अप। आपको कहीं भी सफर में जाना है, सपोज 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आप माउंट आबू आने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो क्या आप अपना पूरा घर उठा के लाए हैं? ऑफ कोर्स नॉट। आप जब पैकिंग कर रहे थे तो आपने क्या सोचा? कि मुझे सिर्फ वही चीजें लेनी है जिसके बिना नहीं चलेगा। यस और नो? तभी आप कम से कम लगेज के साथ अपना कंफर्टेबल जर्नी तय कर सकते हैं। और नॉर्मली कहते हैं एक सूटकेस और एक बेडिंग, दो चीज तैयार करते हैं। आजकल हम एसी में ट्रैवल करते हैं तो हमें वो बेडिंग मिल जाती है, तो लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर मुझे याद है जब हम छोटे थे तो ये दो चीजें हम लेके ट्रैवल करते थे, एक बेडिंग होता था और एक सूटकेस होता था। सूटकेस में आप क्या रखते हैं? अपनी वो सारी कीमती चीजें रखते हैं और उसमें एक ताला भी लगा देते हैं। और हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको हम चेन से बांध भी देते थे। और आप फ्लाइट में हैं तो आपको पता है कि लगेज ऑलमोस्ट सिक्योर्ड है, तो उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये कीमती चीजें क्या हैं जो हमें अपने पास बहुत संभाल के रखनी है, बता सकते हैं आप? वो कीमती चीजें जीवन की क्या हैं जिन्हें हमें बहुत संभाल कर रखना है, जो कभी हमसे चोरी ना हो जाए, इसका अटेंशन रखने की जरूरत है। बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, आत्मविश्वास, ओके, मोरल वैल्यूज, एथिक्स, गुड, हां जी, गुड मेमोरीज, यस, जो हमारे अंदर ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, जो आपको बताया जा रहा है, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, जो हमारे अंदर की शक्तियां हैं, जो हमारे सुसंस्कार हैं, जो हमारी स्वीट मेमोरीज हैं। क्योंकि अनुभव ये कहता है कि अच्छी मेमोरीज को हम थोड़ा कम याद करते हैं और बैड मेमोरीज को क्या करते हैं, वो बातें हमें थोड़ा ज्यादा याद आती हैं। हमारे 32 दांत हैं। मान लीजिए एक दांत में कोई चीज फंस जाती है, जीव कहां जाता है? 31 दांतों में कुछ नहीं फंसा है, वहां नहीं जाता है। एक ही दांत में कुछ फंसा है और जीव बार बार वही जाता रहता है। तो ये हमारे मन की फितरत है, जो बात थोड़ी खटक जाती है, हमारा मन बार बार वही जाता है। पावर टू पैक अप मतलब वो सारी बातें हमें भुला देना है। और इसके लिए एक बहुत अच्छी सी टेक्निक जो हमने परमात्मा से सीखा और समझा, कि हर दिन रात को सोने से पहले 5-10 मिनट टाइम अपने आप को जरूर देना है। आपके कई सेशंस में और भी ये बात बताई गई होगी। क्या मैं जान सकती हूं कल रात को किसने अपने आप को 5-10 मिनट टाइम दिया? ओके, दैट्स गुड। और वो 5-10 मिनट में करना क्या होता है? ओके, भगवान का शुक्रिया, जो भी थ्रू आउट द डे अच्छी बातें हुई उसके लिए ग्रैटिट्यूड, यस, वेरी गुड। क्षमा मांगनी होती है, हमसे कोई गलती हो गई, हमसे हो गई या हां जी, तो उसके लिए हम भगवान से क्षमा मांगते हैं। हां जी, और कुछ? पूरे दिन का चार्ट, अच्छा बुरा जो भी हुआ वो हम भगवान को समर्पित कर देते हैं। परमात्मा ने हमें कहा जो अपने मन की सारी बातें रात को समर्पित करते हैं और करने की आदत डाल लेते हैं, उससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट, आपको नींद अच्छी आएगी और कभी नींद की गोली लेने की नौबत नहीं आएगी। यानी आपको इसको क्लीन करना है, कुछ भी इरिटेशन की बातें, फ्रस्ट्रेशन की बातें, कुछ भी नेगेटिव बातें जो थ्रू आउट द डे हमारे सामने आई है, उसको क्या करना, एक खोपड़े का ढक्कन खोल के इसको, वो चीजों को बाहर कचरे के पात्र में, डस्टबिन में डाल देना है। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको परमात्मा कहते हैं पुट अ फुल स्टॉप ऑन द पास्ट। पावर टू पैकअप का मतलब क्या है, पुट अ फुल स्टॉप टू द पास्ट। और जब हम इसे अपना लेते हैं उसके बाद ही हम अपने आप को प्रेजेंट में रख पाते हैं और फिर हम अवेलेबल हो पाते हैं कि हमें प्रेजेंट में जो करना है वो हम कर सके। नहीं तो पास्ट की बातें इतनी ज्यादा हमारे मन को विचलित करके रखती है और इतना ऑक्यूपाई करके रखती है कि हमें पता है कि इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, फोकस करने की जरूरत है, लेकिन उन चीजों से हम इतने परेशान होते हैं कि हम फोकस कर नहीं पाते हैं। सो दिस इज अ पावर, पावर टू पैकअप, जो हमें अपने आप में लाने की जरूरत है। दूसरी शक्ति है पावर टू टॉलरेट। एक एग्जाम्पल बताया है कि जिस पेड़ में फल लदे हुए होते हैं उसी पेड़ को पत्थर का मार सहन करना पड़ता है। फल ही नहीं है तो, हां जी, कोई पत्थर मारेगा भी नहीं। जो व्यक्ति कुछ नहीं करते हैं उनको कमेंट्स भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, मिलेंगे तो भाई कुछ नहीं करते इतना ही मिलेगा, बाकी जो कमेंट्स किसको ज्यादा मिलते हैं, जो कुछ नहीं करते वो या जो करते हैं वो? जो करते हैं वो, उनको ज्यादा कमेंट्स मिलते हैं, ऐसे किया, ऐसे नहीं किया, ये किया, ये नहीं किया। जो कुछ करते ही नहीं है एक ही कमेंट मिलेगा, कुछ नहीं करते हैं। तो क्या करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस, करना चाहिए। अपनी गलतियों से हमें अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, उससे सीख लेकर हमें अपने आप को अपडेट करना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं टॉलरेट करने के लिए हमें कौन से गुणों की जरूरत है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूं, माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं तो बच्चा नादानी से कभी माता पिता के बाल भी खींचता है, कभी धक्का मुक्की भी लगाता है, कभी पैर से लात भी मारता है। पर आप सभी माता पिता बैठे हैं, कभी मुश्किल लगा कि कितना टॉलरेट करना पड़ता है, कभी लगा? हां जी, लगा? बच्चे की हर अदा माता पिता को भा जाती है, यस और नो? क्यों? हां जी, यस, प्यार है, लव है, अफेक्शन है, जिसके कारण वो कुछ भी करे वो हमें कुछ लगता ही नहीं। द सेम हियर, जिस व्यक्ति से कुछ भी उसकी बात या उसका कोई एक्शन हमें सहना मुश्किल लग रहा है, इसका सिंपल सा इंडिकेशन है कि उस व्यक्ति के प्रति अभी हमारे मन में वो प्यार की भावना पैदा नहीं हो पाई है। ट्राई करके देखिए, उस व्यक्ति के लिए वो अंदर का प्यार एक बार उमड़ने दीजिए, फिर देखिए उनकी बात आपको सहन करना मुश्किल नहीं लगेगा। और सहन करने के लिए फर्गीव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माफ करना भी हमें आना चाहिए, तभी हम उसकी बात को सहन कर लिया, हमने उसको माफ कर लिया, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे मन में उसके लिए गुड विशेस पैदा होंगी। किसी ने आपको परेशान किया, आपने उसे सहन किया और आपने उसको माफ किया, चलो कोई बात नहीं, व्यक्ति तनाव में होगा, मूड ऑफ होगा, थोड़ा मन विचलित होगा, उसने मुझसे ऐसा कह दिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं, आपने उसको माफ कर दिया, अब आपके मन में उसके प्रति गुड विशेस क्रिएट होंगी कि भगवान तेरा भला करे. एंड दिस इज व्हाट डिविनिटी. ये सारी चीजें नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में बिना मेडिटेशन के, बिना स्पिरिचुअल नॉलेज के डेप्थ में जाए यूजुअली नहीं आ पाती है. जो हमारा अच्छा कर रहा है उसके लिए गुड विशेस बहुत कॉमन है, पर जो हमारा बुरा कर रहे हैं उनके लिए भी गुड विशेस, उसके लिए हमें टॉलरेंस चाहिए और हमारे अंदर फॉरगिवनेस चाहिए. और ये शक्ति की भी हमें सख्त जरूरत है. मान लीजिए हमारे बॉस थोड़े गुस्सैल हैं, मान लीजिए, और उनके कारण मुझे परेशानी होती है क्योंकि वो बात बात पे गुस्सा करते हैं. मान लीजिए मेरी सांस थोड़ी कड़क है और मेरे हर काम में कुछ न कुछ नुक्स निकाल लेती है. मैं जितना कोशिश करूं अच्छे से करने के लिए, वो कुछ कुछ न कुछ उसमें नुक्स निकाल लेती है. ठीक है, अब दिस इज अ सिचुएशन. अब अध्यात्म ये सिखाता है कि व्यवहारिक जीवन में जब बड़े कुछ कहे तो उस समय चुप हो लेना है. पर अगर आपको लग रहा है कि उनका कहना गलत है तो बेशक आपको अपनी बात उनके सामने रखना ही चाहिए, परंतु वो कब, हाँ थोड़ी देर बाद, जब उनका मूड अच्छा हो, जब वो सुनने की स्थिति में हो, उस समय. इसलिए कहा जाता कि शक्ति का उपयोग सही समय पर सही स्थिति में की जाए तभी वो शक्ति का सुफल हमें मिल पाता है. अगर आपने गलत टाइम में, गलत मैग्नीट्यूड में और गलत व्यक्ति के साथ उस शक्ति का उपयोग कर लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, राइट? तो ये सहन शक्ति को हमें अपने अंदर भरने के लिए एक ही चीज हमें अपने अंदर लाना है कि सहन करने के लिए मुझे सामने वाले के लिए लव और अपने अंदर फॉरगिवनेस की क्वालिटी को डेवलप करना है. मैं कल भी आपको बता रही थी, एक बार महात्मा बुद्ध जी बैठे थे साधना में, एक व्यक्ति आया और खूब अच्छे से गालियां देने लगा घंटा भर. कितना टाइम? घंटा भर गालियां देता रहा. एब्सोल्यूट नो रिएक्शन. दिस इज टॉलरेंस. अच्छा, कई बार यहां से तो रिएक्शन नहीं होता है लेकिन यहां खूब चलता है. अगर यहां भी चल रहा है तो भी उसको टॉलरेंस नहीं बोलेंगे. यहां से भी रिएक्शन नहीं और यहां से भी रिएक्शन नहीं, वो हमें परमात्मा सिखाते हैं. और वो तभी हो सकता है जब हम अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से अपने आप को एक एलिवेटेड स्टेज पर ले जाते हैं. तो ये पावर ऑफ टॉलरेंस भी हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है. और टॉलरेट वही कर सकता है जिसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट हो. सेल्फ रेस्पेक्ट है, मैंने बहुत काम किया और आपने कहा कुछ नहीं करती है, बट आई नो कि मैंने क्या किया है, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता यदि आपने कहा कि मैं कुछ नहीं करती है. पर अगर मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन है तो डेफिनेटली आपने ये जो कहा ना, कुछ नहीं करती है, बैठी रहती है, ये चीज मुझे, ये बात मुझे जरूर खटक जाएगी और कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में वो रिएक्शन भी मेरे बिहेवियर में, मेरे वर्ड्स में नजर आनी शुरू हो जाएंगी. नेक्स्ट है पावर टू एडजस्ट. इसमें एक एग्जांपल बताया नदी और सागर का. नदी अपने लंबे सफर में कितना कुछ अपने साथ लेते हुए चलती है और सागर में समा जाती है, परंतु सागर ने कभी नहीं कहा ए नदी, लेकर आना है तो स्वच्छ जल लेकर आना, तेरे ये कचरे वचरे नहीं चलेगा. नेवर. हम कहते दरिया दिल, इतना बड़ा दिल कि कोई कैसा भी है हम उसे स्वीकार कर सके। इतना बड़ा दिल। मुझे एक बात बताइए, हम सभी भगवान के बच्चे हैं, डू यू ऑल एग्री? हम में से कोई ऐसा है जो एकदम परफेक्ट है, एब्सोल्यूट नो फ्लॉज हैं कोई ऐसे? सबके अंदर कमियां हैं, कम ज्यादा, किसी में कुछ किसी में कुछ, परंतु भगवान ने हमें एक्सेप्ट किया है। यू आर माई लवली चाइल्ड, स्वीट चाइल्ड, यस और नो? यस और नो? तो ये संसार भी भगवान की रचना है और हर आत्मा भगवान की संतान है। तो जिसको भगवान ने एक्सेप्ट किया है उसको मैं रिजेक्ट करने वाली कौन? जिसको भगवान ने एक्सेप्ट किया है उसको मैं रिजेक्ट करने वाली कौन? आजकल डिवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्यों? क्यों? दोष शक्ति की कमी, टॉलरेंस और एडजस्टमेंट। अपने रिलेशनशिप को बहुत हेल्दी बनाने के लिए, बहुत स्वीट बनाने के लिए हमें इन दोनों शक्तियों की जरूरत है, पावर टू टॉलरेट एंड पावर टू एडजस्ट। वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर लाने की जरूरत है। हमें हमारे बड़ों ने सिखाया, मान लीजिए मुझे ठंडी ज्यादा लगती है, हम कमरे में दो जने हैं, आप लोगों को भी एकोमोडेशन ऐसे ही मिला है ना, टू बेडेड एकोमोडेशन, दो जने हैं, एक को ठंडी ज्यादा लगती है, एक को गर्मी ज्यादा लगती है। जिसको गर्मी ज्यादा लगती है वो कहता पंखा चलाओ, एसी चलाओ, और जिसको ठंडी ज्यादा लगती है वो क्या कहता? क्या करना चाहिए? यस, वेरी ट्रू। गर्मी वाले के लिए ऑप्शन नहीं है, वो पंखा चलाएगा, पर जिसको ठंडी लग रही है उसके लिए ऑप्शन है, भी दोहड़ ओढ़ लो, और ज्यादा ठंडी लग रही है तो कंबल ओढ़ लो। दिस इज व्हाट? हाँ जी, आप यहां की बात कर रहे हैं, यहां की बात कर रहे हैं तो अवेलेबल करवा देंगे। प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता जरूर है। आई डू नॉट एग्री कि सॉल्यूशन नहीं होता है। वेयर देर इज अ प्रॉब्लम देर इज डेफिनेटली अ सॉल्यूशन। देखिए मैम कह रही है बिस्तर पे जो चद्दर बिछा हुआ है कुछ नहीं तो उसी को माना। अगर आपने सोच लिया कि मुझे एडजस्ट करना है तो आपको उसका रास्ता भी दिखाई देगा। जब तक आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ठंडी लग रही है तो इसको पंखा बंद करना चाहिए, तब तक आपको वो रास्ता दिखाई नहीं देगा। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। तो जब ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है, व्यक्ति कोई भी हो, व्यक्ति कैसा भी हो, उसके साथ एडजस्ट करना हमें कभी मुश्किल नहीं लगेगा। हमें सिर्फ अपने अंदर के इनर पोटेंशियल को, अपने अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने की जरूरत है। और इसमें मेडिटेशन ऐसे काम आता है कि जब हम परमात्मा को याद करते हैं, हर व्यक्ति को एक आत्मा की नजर से देखते हैं, तो वो हमें भगवान की संतान नजर आता है और उसके प्रति एक नेचुरल प्यार की भावना आती है। अब मान लीजिए किसी का भाई या किसी की बहन डिसेबल्ड है, बहुत सारी लिमिटेशंस उसकी अपनी होंगी, फिर भी हम एडजस्ट करते नहीं करते? करते नहीं करते, एडजस्ट करते हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज में पांच पांच, छह छह, सात सात भाई बहुत प्रेम प्यार से रहते थे, अभी क्या हो गया है? अभी जॉइंट फैमिली बहुत दूर की बात है, अपने पेरेंट्स के साथ भी एडजस्ट करना मुश्किल हो गया है। तो इसको प्रगति कहेंगे, हैं जी? इसको प्रगति कहेंगे? नहीं। तो ये सारी चीजें जो कहीं थम गई हैं, ये सारी चीजें जो कहीं रुक गई हैं, इन चीजों को फिर से अपने अंदर एक्टिवेट करने के लिए हमें अध्यात्म से जुड़ना ही पड़ेगा। पहले जमाने के लोग नेचुरली स्पिरिचुअल हुआ करते थे, पर अभी वो नेचुरली स्पिरिचुअल वाली बात नहीं रही है, इसलिए हमें स्पिरिचुअलिटी को लर्न करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पावर, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। एक जोहरी का काम होता है परखना। हम भी रियल लाइफ में तरह तरह के सिचुएशंस, तरह तरह के लोगों के संपर्क में आते हैं। कई लोग होते हैं बहुत चिकनी चौपड़ी बात करते हैं, परंतु नीयत अच्छी नहीं होती है। और कई लोग होते हैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कभी कभी आपके कानों को थोड़ा अच्छा न लगे वैसा भी बोल जाते हैं, परंतु उनकी नीयत साफ होती है, उनके अंदर आपके लिए गुड विशेस होता है। कहीं आपको और थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा पंक्चुअल, ज्यादा अच्छा बनाने की भावना होती है। यदि आप में परख शक्ति है तो आप जान पाएंगे कि इनकी नीयत मेरे लिए बहुत अच्छी, इनकी भावनाएं मेरे लिए अच्छी हैं, भले ये बोल थोड़ा वैसे रहे पर इनकी भावनाएं अच्छी हैं, और आप उनकी बातों को माइंड नहीं करेंगे। और जो चिकनी चौपड़ी बात कर रहे हैं और आपको कहीं फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको भी पहचान लेंगे और आप उनकी बातों में धोखा नहीं खाएंगे। पर ये काम कब करता है? जब हम मेडिटेट करते हैं, हमारे थॉट्स की इतनी क्लैरिटी हो जाती है, हमारे थॉट्स इतने प्योर हो जाते हैं, हमारे वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हो जाते हैं कि हम सामने वाले के थॉट्स को, उनके वाइब्रेशंस को बहुत इजीली समझ पाते हैं। नहीं तो कई बार तो पता ही नहीं चलता है। जब यहां प्योरिटी है तब आपको वो वाइब्रेशंस बहुत इजीली कैच हो जाते हैं, आप जान पाते कि अरे ये कह रहे हैं परंतु मुझे लग रहा है कि उनकी भावना एक्चुअली ऐसी नहीं है, और आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेट करने की शक्ति भी हमारे अंदर, हमारे डे टू डे लाइफ में होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट इज पावर टू जज। ये दोनों पावर, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड पावर ऑफ डिसीशन मेकिंग, ये दोनों हमें अपने कार्य क्षेत्र में बहुत 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 आवश्यक है। और स्पेशली फौज में आपके हर एक डिसीशन की वैल्यू बहुत होती है, क्योंकि उसका असर एक इंडिविजुअल को नहीं आएगा। आप जो डिसीशन लेंगे एज एन अथॉरिटी, उस डिसीशन का असर एक इंडिविजुअल पे नहीं, उसका असर इंटायर देश पे आएगा, राइट? तो डिसीशन मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। यहां तराजू बताया है, तराजू का काम होता है तौलना। मन में विचार निरंतर आते रहते, ये करूं, ऐसा करूं, ये बोलूं, ऐसा बोलूं। इंटेलेक्ट हमारा जजमेंट मेकिंग फैकल्टी है, बुद्धि। मन में जो विचार चलते हैं बुद्धि उसे तौलती है। एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल ले लेती हूं। समर सीजन है, आइसक्रीम खाना सबको अच्छा लगता है। सपोज मुझे जुकाम है, सर्दी है, खांसी है, पर आइसक्रीम मुझे भी पसंद है, और आज भोजन में आइसक्रीम है, मन क्या कहेगा? खा लूं? बुद्धि क्या कहेगी? बुद्धि वो जजमेंट मेकिंग एबिलिटी है जो जज करती है कि या ये आइसक्रीम खाना मेरे लिए हेल्दी होगा, तो बुद्धि क्या कहती? नहीं। तो बुद्धि मुझे जजमेंट देती है कि आज आइसक्रीम नहीं खाना, अभी चार दिन रुक जाओ, चार दिन के बाद जब जुकाम थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा फिर एक क्या दो खा लेना, दो क्या भले तीन खा लेना, पर आज नहीं। ये बुद्धि जजमेंट देती है। और जो सेंसिबल होते हैं वो किसकी बात सुनेंगे? जो समझदार होते हैं वो किसकी बात सुनेंगे? वो बुद्धि की बात सुनेंगे। यानी बुद्धि जब हमारी शक्तिशाली होगी तभी हम मन को अपने नियंत्रण में रख सकेंगे, और बुद्धि का कहा मानकर हम बुद्धि के अनुसार चल सकेंगे। और आज की तारीख में मन और बुद्धि दोनों की दिशा एक है या अलग अलग है? पीछे जो ऑफिसर्स बैठे हैं थोड़ा रिप्लाई देंगे। आज की तारीख में मन की दिशा और बुद्धि की दिशा कभी सेम भी होता है बट अलग होता है। हम कहते दो मन है, दो मन नहीं है। कहते एक मन कहता जाऊं, कई लोग कहते एक मन कहता जाऊं, दूसरा मन कहता नहीं जाऊं। दो मन नहीं होते, एक है मन और दूसरी है बुद्धि। मन कह रहा है जाऊं या नहीं जाऊं, बुद्धि कह रही है नहीं जाऊं या जाऊं। नाउ इट्स यू टू टेक द डिसीजन। अगर बुद्धि आपको कह रही है नहीं जाऊं तो मैं नहीं जाऊं, इससे में मेरा फायदा है। इंपॉर्टेंट थिंग, आज हमारी बुद्धि भी धोखा दे रही है। यस और नो? बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया और फिर लगा कि अरे ये तो गलत हो गया, ये कैसे हो रहा है? हो रहा है ऐसा? ये कैसे हो रहा है? अब आपको मैंने बताया मन कह रहा है खाऊं और बुद्धि जो तौल रही है खाने में क्या फायदा नहीं खाने में क्या फायदा, व्हाट इज गुड फॉर मी, तो आप खुद ही जज कर लीजिए विच इज बेटर। तो बुद्धि ने थोड़ी कहा कि मत भाग, बुद्धि ऐसा बोल नहीं सकती है। अगर बुद्धि बोल रही है तो बुद्धि करप्ट है। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। हमारी बुद्धि भी हमें गलत दिशा कब दिखाती है? जब बुद्धि हमारी करप्ट है। एग्जांपल, मान लीजिए मैं डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हूं, मेरे चार सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है, और कोई ऐसी फैसिलिटी है जो मेरे किसी भी सबॉर्डिनेट को मिल सकती है, तो मेरे उन चार सबॉर्डिनेट्स में जो सबसे ज्यादा कैपेबल हैं, तो लॉजिकली और मतलब सही माने तो वो फैसिलिटी जो सबसे ज्यादा कैपेबल है उसे मिलनी चाहिए। परंतु जो सबसे ज्यादा कैपेबल है उससे मेरी जेलसी है, मेरा डिसीजन क्या होगा? यस प्लीज, यस प्लीज, उसको नहीं दी जाएगी। सेकेंड या थर्ड नंबर पे जो कैपेबल लिस्ट में है उसे थोड़ा फेवरिज्म है, थोड़ा अटैचमेंट है। मेरे डिसीजन क्या होंगे? मेरे डिसीजन उसके फेवर में चले जाएंगे। इसलिए बुद्धि यदि हमें गलत दिशा दिखा रही है, बुद्धि यदि हमें राइट जजमेंट दे नहीं पा रही है, ये इंडिकेशन है कि आवर इंटेलेक्ट इज करप्ट, करप्ट बाय अटैचमेंट, करप्ट बाय ईगो, करप्ट बाय जेलसी, करप्ट बाय एंगर, करप्ट बाय एनी नेगेटिविटी। आते हैं उस बात पर, आते हैं। हाँ जी, सी कंसाइंस, दो टर्म्स हैं आपने भी सुना होगा, वन इज इंटेलेक्ट एंड द अदर इज कंसाइंस। इंटेलेक्ट करप्ट हो सकता है, कंसाइंस करप्ट नहीं होता। इसलिए जो आप कह रहे ना, अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनो, एक है मन की आवाज और एक है अंतर आत्मा की आवाज। आप जो कह रहे वो है अंतर आत्मा की आवाज। आप बिल्कुल डिटैच हो जाएं हर चीज से थोड़ा अपने आप को पीसफुल स्टेट में रखें, अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करें, फिर आप अपने वो अंदर की अंतरात्मा की आवाज सुनिए। इट इज डेफिनेट कि आपकी अंतरात्मा की जो आवाज होगी दैट विल बी 100% राइट। हां जी, संस्कार से हमारे मन के विचार प्रभावित होते हैं। जैसे संस्कार होंगे वैसे ही आपके मन के विचार उत्पन्न होंगे। हां जी, ओके ओके। यहां पर एक बात आती है, बैलेंस बिटवीन द लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। आप लॉजिकल और इमोशनल यदि दोनों ही एस्पेक्ट को सामने रखते हुए अपना बुद्धि का उपयोग करते हैं तो आप राइट डिसीजन ले सकेंगे। जैसा आप कह रहे हैं, कई बार हम टू मच लॉजिकल हो जाते हैं तो वो सही नहीं होता है, और कई बार हम टू मच इमोशनल हो जाते हैं तो भी वो सही नहीं होता है। तो दोनों चीज का बैलेंस तो डेफिनेटली आवश्यक है। लॉजिकल और इमोशनल दोनों एस्पेक्ट को हमें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। परंतु जैसे एक बैलेंस है, आपने देखा होगा आजकल होम डिलीवरी के लिए भी लोग आते हैं, उनके पास भी एक बैलेंस होता है, और आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया होगा, 1 किलो डालो तो भी 800 ग्राम का ही सामान आपके पास आएगा। कैसे होता है वो? कुछ ना कुछ अपनी सेटिंग करके रखते हैं। यस, है बैलेंस, पर वो बैलेंस प्रॉपर वे कन्वे नहीं कर रहा है। द सेम हियर, अगर ये थोड़ा भी बायस्ड है अटैचमेंट से, ईगो से, ग्रीड से, तो ये हमें कभी भी राइट जजमेंट दे नहीं सकता, और इसके लिए आवश्यक है इसे बायस फ्री किया जाए। और बायस फ्री करने के लिए हमें अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करने की जरूरत है। एक एग्जांपल बताती हूं, जो आपके बहुत नियर एंड डियर हैं उनके बारे में मैं आपको पूछूं, उनको खाने में क्या पसंद है, उनको कौन सा कलर पसंद है, आप फटाफट बता देंगे, या आई नो ही लाइक्स ब्लैक कलर, उनको खाने में गोलगप्पे पसंद है। पर कोई उतने आपसे बहुत अच्छे से परिचित नहीं है, अगर उनके लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स के बारे में मैं आपसे पूछूंगी तो आप क्या कहेंगे? सिस्टर हम उतने परिचित नहीं है, हमको उतना पता नहीं है। ऐसे ही अध्यात्म में हमने सीखा, हम अपने लेवल पे डिसीशन लेते हैं, अपने आप को बायस फ्री करते हैं, अपने इंटेलेक्ट का सदुपयोग करते हैं, लॉजिकली इमोशनली दोनों चीज को बैलेंस में रखते हैं और डिसीशन लेते हैं। दैट्स वन थिंग। एक दूसरा नजरिया ये है कि जो भगवान की नजर में सही है वो डिसीशन ले लिया जाए। अगर आप भगवान की नजरिए में जो सही है वो डिसीजन ले रहे हैं तो शायद आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम कभी गलत नहीं होंगे। अब उनके लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स कैसे पता चलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा उनसे इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करेंगे? जैसे आपके पिताजी को नहीं पसंद है झूठ बोलना, आपको पता है कि मेरे पापा को झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। सिमिलरली भगवान भी हमारा पिता है, यस और नो? यस और नो? जब हमारी रिलेशनशिप उनके साथ उतनी इंटीमेट हो जाएगी तो हमको पता चलेगा ये बेईमानी करना मेरे पिता को पसंद नहीं है, मुझे क्यों नहीं करना? मुझे क्यों नहीं करना? क्योंकि जो मेरे पिता को पसंद नहीं है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। और तब आप एक हायर लेवल पे जाके डिसीशन ले पाते हैं, और वो डिसीशन कभी आपका गलत नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात वो डिसीशन में आपका भी हित होगा और दूसरों का भी हित होगा। दैट इज द रीजन व्हाई डिसीशन मेकिंग के लिए मेडिटेशन का एक बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपने मन को परमात्मा से कनेक्ट किया, आपका बैलेंस बिल्कुल सीधा है, बैलेंस्ड है, अभी आपको प्रॉपर और राइट जजमेंट, क्विक जजमेंट, एक्यूरेट जजमेंट लेने में मदद कर सकता है। आप इसमें कभी फेल्योर नहीं होंगे, और जो डिसीशन होगा वो बाद में भी आप कभी चलकर अपने आप को थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैंने जो डिसीशन लिया था वो बिल्कुल सही लिया था। नेक्स्ट इज पावर टू फेस। यहां पे एक एग्जाम्पल बताया है, कोई नियर एंड डियर की किसी की डेथ हो जाती है, तो अक्सर हमने देखा है कई ऐसे होते हैं सुसाइड भी कर लेते हैं, कई ऐसे होते हैं जो एकदम टूट जाते हैं, उनकी जीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। दिस इज ऑल बिकॉज जो सिचुएशन हमारे सामने आई है उसको फेस करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। परंतु सिचुएशंस कैसी भी हो हम उसको फेस कर सके, इसमें मेडिटेशन का रोल क्या है बता सकते हैं आप कोई? सिचुएशन कोई भी हो उसको हम फेस कर सके, इसमें मेडिटेशन का रोल क्या है? शक्ति मिलती है मेडिटेशन से। हाँ जी, इनर स्ट्रेंथ आता है जी, सारी शक्तियां आ जाती हैं। डिटैचमेंट, यस, अमर है, यस, वेरी गुड। तो जैसे ही हम मेडिटेट करते हैं हमें एक फीलिंग धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग आने लगती है कि भगवान मेरा साथी है। हमारा एक बहुत सुंदर सा गीत है, ईश्वर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। फेस करने के लिए आपके अंदर साहस चाहिए, आपके अंदर फियरलेसनेस चाहिए, और अगर आपको प्रतिपल महसूस होने लगे कि भगवान मेरा साथी है तो ये दोनों गुण, साहस और निर्भयता, ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप हो जाएंगे। फिर कोई नया काम है, नया टास्क है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए भी आपको फेस कर, ऐसा नहीं सिर्फ ऐसी कोई ऐसे हादसा हो जाए तो ही फेस करने की, नया टास्क है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी डील करने के लिए आपके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और वो हमारे अंदर आ जाती है। हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ग्रो कर जाता है जब हम सोचते हैं भगवान मेरा साथी है। और स्पिरिचुअलिटी में एक दूसरी बात हमको समझाई गई है, जब कभी भी हमारा आत्मविश्वास ढीला पड़ने लगे, कमजोर पड़ने लगे, तो एक बात हम अपने आप को याद दिला सकते हैं कि सृष्टि में जो खेल चल रहा है इट इज साइक्लिक। आपका है नेक्स्ट सेशन है जिसमें आपको बताया जाएगा साइकिल ऑफ टाइम, इट्स ऑल हैपनिंग इन अ वेरी साइक्लिक वे। माना कुछ भी जो हो रहा है वो नया नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इट्स अ साइकिल विच इज जस्ट बींग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। यदि कोई काम आपको लगा कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं और आपको किसी ने याद दिला दिया कि जनाब आपने इसे बहुत बार किया है, क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? जिस कार्य को हमने बहुत बार किया है अब की बार उस कार्य को करने में हमें कॉन्फिडेंस का लेवल भी ज्यादा होगा, इजी भी लगेगा और बहुत स्वीटेबली हम उसे कर सकेंगे। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स करने की जो एबिलिटी है इन दो बातों से हमारे अंदर आ जाती है कि जो भी बातें हमारे सामने आ रही है पहली बार नहीं आई है, क्योंकि ये सृष्टि साइक्लिक वे में चलती आई है, हमने अनेकों बार फेस किया है तो अब की बार भी कर लेंगे, नथिंग ग्रेट। और दूसरी बात है भगवान मेरा साथी है, और तीसरी बात है मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की वो सोई हुई शक्तियां ऑटोमेटिकली क्या होती है, जागृत हो जाती है, तो फिर हमें चीजों को फेस करना सहज लगने लगता है। आपने सुना होगा ना हनुमान के पास उड़ने की शक्ति थी परंतु भूल गए थे, उन्हें याद दिलाया गया और जैसे ही याद दिलाया गया क्या हुआ? एंड मेडिटेशन प्लेज दैट रोल। जो आपको स्पिरिचुअल इनपुट मिल रहा है इट इज प्लेइंग दैट रोल। कुछ नया आप में डाला नहीं जा रहा है, जो आपके अंदर है, जो हमारे अंदर है, हमें सिर्फ एहसास कराया जा रहा है कि इतना कुछ हमारे अंदर खजाना, इतनी शक्तियां हमारे अंदर भरी हुई है। नेक्स्ट, पावर टू कोऑपरेट, सहयोग करने की शक्ति। कोई भी सिचुएशंस को बहुत अच्छे से डील करने के लिए ये दो पावर्स चाहिए, पावर टू कोऑपरेट और पावर टू फेस। अगर आपके अंदर साहस है, निर्भयता है और आप टीम को लेकर चलना जानते हैं तो आपको किसी बात में घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे बताया कि कितना ही बड़ा पहाड़ हो, सबकी एक उंगली का सहयोग बहुत होता है उस पहाड़ को उठाने के लिए। तो वो टीम बिल्डिंग, वो टीम स्पिरिट की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, तब हमारा हर कार्य बहुत इजी हो जाता है. एंड द लास्ट पावर, इट इज पावर टू विथड्रॉ. और एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दिया है, किसका? कछुआ. हाँ जी, टॉयज के पास एक स्पेशल एबिलिटी है, वो जब चाहे अपने आप को क्या करता है, सिकुड़ लेता है. इसका ये ऊपर का शेल बहुत टफ होता है, उसमें कुछ थोड़ा भी हिट हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बहुत चतुर होता है, समझ पाता है कि कब फैलाना और कब सिकुड़ना. ऐसे ही भगवान ने हमें देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए मुख, सब कुछ दिया है. बट हमें भी समझ होनी चाहिए कब बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, कब नहीं बोलना. राइट? एक बच्चा 1-1.5 साल में बोलना शुरू कर लेता है, पर क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, सीखने में सारी जिंदगी लग जाती है. सिंपल सा एग्जाम्पल, कितना इंपॉर्टेंट है हमारी इन इंद्रियों पर नियंत्रण करना. एक राजा थे, बहुत शौकीन थे ज्योतिषियों को हाथ दिखाना, मेरे भाग्य में क्या है जानना. तो एक ज्योतिष आए, उनको पूछा कि भी मेरे भाग्य में क्या लिखा है. तो ज्योतिष ने कहा, महाराज आपकी भाग्य की रेखाएं तो बहुत खराब है. बोला अच्छा, पूछा क्या खराब है. तो बोला आपके सामने आपके जीते जी आपके परिवार के एक एक सदस्य की डेथ होगी, सब मर जाएंगे. तो बोला सब बाद में मरेंगे, पहले तू मर जा. हालांकि उन्होंने गलत नहीं बोला था, सही बोला था, पर जिस तरीके से बोला वो थोड़ा सुनने में राजा को अच्छा नहीं लगा और राजा ने उसको सजा दे दी. फिर राजा की उत्सुकता बनी रहती थी, कोई ज्योतिष आए और देखे मेरा हाथ कुछ, अब कौन आएगा. जब पता है कि भाई सच बोलेंगे और आपको पसंद नहीं आएगा तो आप तो उल्टा ही सजा देने वाले हो, तो कौन आएगा. तो कोई ज्योतिष आता ही नहीं था. एक ज्योतिष था जो बड़ा चतुर था, उसने कहा कि मैं जाता हूं राजा के पास. तो गया राजा के पास, राजा ने अपना हाथ दिखाया कि बोलो मेरे नसीब में क्या है. तो बोला महाराज आप तो बड़े नसीबदार हैं. अब क्या हुआ, राजा को बड़ी खुशी हुई. बोला अच्छा क्या है मेरे नसीब में. तो बोला महाराज आपके पूरे परिवार में आपकी आयु सबसे लंबी है. बात वही, यस बात वही, लेकिन बोलने का जो तरीका था वो उनके कानों को भा गया. तो ये जो तरीके, कब बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना, ये हमें परमात्मा अपनी टीचिंग्स में सिखाते हैं. यानी कल भी आपसे कहा था, आप आए हैं यहां पर, ये सारी चीजों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जाने के बाद इसको कंटिन्यू कैसे रखेंगे. जब आप परमात्मा की उन शिक्षाओं को सुनना जारी रखेंगे, क्योंकि हमने जो सुना, हमने जो अनुभव किया, हमने जो जीवन में आजमाया, उसके आधार पर हम आपको कुछ बातें आपसे शेयर कर रहे हैं. लेकिन अभी यही इनपुट आपको यदि कंटिन्यू मिलता रहेगा तो लाइफ को एक राइट वे में चैनलाइज करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत नेचुरल और इजी हो जाएगा. कल आप में से कई बोल रहे थे कि इजी नहीं है अपने आप को चेंज करना. यस इट्स ट्रू, इजी नहीं है, लेकिन अगर हमें गाइडेंस मिलता रहे तो, कंटिन्यूअस गाइडेंस मिल रहा है, रेगुलर गाइडेंस मिल रहा है, और एक बहुत एबल लीडरशिप के साथ हम अपने आप को चला रहे, तो वो डिफिकल्ट भी क्या हो जाएगा, वो डिफिकल्ट भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा. तो पावर टू विथड्रॉ. तो एक गुड़िया बेचने वाला एक बार गुड़िया बेच रहा था, 3 गुड़ियाएं थी उसके पास, तीनों एकदम सेम, दिखने में एकदम सेम, आइडेंटिकल. एक पे कीमत लिखी थी 100 रुपये, दूसरे पे कीमत लिखी थी 1,000 रुपया और तीसरे पे कीमत लिखी थी 10,000 रुपये। तो एक व्यक्ति की नजर पड़ी, उसने गौर से देखा, तीनों एकदम सेम, एक पे 100, दूसरे पे 1,000, तीसरे पे 10,000, कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने सेल्समैन से पूछा कि भाई क्या है तो तीनों एक जैसे, पर तीनों का भाव अलग अलग क्यों है। तो उसके पास एक तार था, एक वायर था, उसने एक वायर, एक गुड़िये के कान में वायर डाला कान से, ठीक है, और वो वायर निकला, कहां निकला, डाला कान में और निकला मुंह से। तो बोला इसकी कीमत सबसे कम है 100 रुपया। दूसरे गुड़िये के कान में तार डाला, वायर डाला, और वो वायर निकला दूसरे कान से, बोला ये मीडियम कीमत वाली गुड़िया है, इसकी कीमत है 1,000 रुपया। अब तीसरी गुड़िया सबसे ज्यादा कीमती थी 10,000 रुपये की, क्या हुआ होगा, यहां डाला और वो निकला ही नहीं। माना इतना बातों को समाने की शक्ति, इतना चीजों को सहन करने की शक्ति, इतना जो बातें सामने आ रही हैं उसको एक्सेप्ट करने की शक्ति। तो ये जो संयम, क्या देखें क्या नहीं देखें, एक बहुत अश्लील चित्र आपके सामने आया, इट्स अ चॉइस, आप आंखें गाड़ के देखेंगे या आंखें फिरा लेंगे, यस और नो। आप कहेंगे दीदी क्या करें, सारे चित्र ही ऐसे लगे थे, तो नजर तो जाएगी ना, बट देयर इज अ चॉइस, यस और नो, यस और नो, यस। कान है सुनने के लिए, कान पे भगवान ने कोई शटर नहीं दिया है, दिया है कान पे भगवान ने कोई शटर नहीं दिया है कि आपको नहीं सुनना है तो शटर डाल दो और सुनना है तो शटर खोल दो, ऐसा ऑप्शन नहीं है। और कुछ ऐसी बातें हो रही है जो आपको पता है सुनने से मन डिस्टर्ब ही होने वाला है और आप सुनना नहीं चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, यस प्लीज, क्या कर सकते हैं। पर हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है, मान लीजिए बड़े बैठे हैं वहां पे उठ के जाना थोड़ा सा है ना, अच्छा उस समय बैठ के राजयोग करें, मन ही मन राजयोग कर ले, अपने आप को डिटैच कर ले, आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी हैं, है ना। देखिए कई बार लोग बहुत धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं, हम ऐसे कान लगा के सुन लेते हैं और हमको सुनाई दे जाती है वो सारी बातें, am I right? और कई बार लोग बहुत तेज आवाज से बात कर रहे हैं बट हम अपने किसी काम में बहुत फोकस्ड हैं, बहुत बिजी हैं, उनकी बात हमें सुनाई, उनकी बातें हमें सुनाई नहीं देती है, हाउ कम, शटर तो नहीं डाला था, यस यस, आपको रुचि नहीं थी, आपको इंटरेस्ट नहीं था, आपने अपने इंटरेस्ट को कहीं और एंगेज किया हुआ था, जिसके कारण जोर जोर से बात कर रहे थे फिर भी वो बातें आपको सुनाई नहीं दी। ये जो तरीके कि पता है डिस्टर्ब होंगे तो उससे अपने आप को आइसोलेट कर लेना, और आइसोलेट होने के लिए आपको वहां से उठ के जाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, अगर हालात ऐसी हैं आप जा सकते हैं इजीली तो इट्स फाइन, नहीं भी जा सकते हैं तो भी हमें कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वी हैव अ वे कि मन को हम अलग तरीके से बिजी कर ले, एंगेज कर ले, ताकि उन बातों का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। तो ये पावर टू विदड्रॉ, जिससे हमारे अंदर की लिसनिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, और जितना ज्यादा हम औरों को सुन पाते हैं उतना हम उनको प्रॉपर सॉल्यूशन दे पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। तो डे टू डे लाइफ में ये सारी शक्तियां हमें अति 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 आवश्यक है, और इन सारी शक्तियों को अपने अंदर भरने का एक ही तरीका है, अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करें। अपने ये जो 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को हम अपने नियंत्रण में रखें। अपने सेंस ऑर्गन पे मास्टरी हासिल करना ये राजयोग की अनेक सिद्धियों में से एक महान सिद्धि है, अपने इंद्रियों पर संयम। तो देखिए यहां पे बताया है कि अपने रिलेशनशिप को यदि बहुत अच्छे बनाने हैं तो ये दो पावर, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप मैटर करते हैं हमारा बिहेवियर कैसा है, यस और नो। और हमारे बिहेवियर को सदा सबके लिए पॉजिटिव बनाए रखने के लिए हमें टॉलरेट और एकोमोडेट, एडजस्ट करने की शक्ति, इन दोनों को अपने अंदर अपनाने की जरूरत है। जो वर्कफील्ड की बात आती है तो हमें डिसीशन मेकिंग और डिस्क्रिमिनेशन के पावर को सही ढंग से अप्लाई करने की जरूरत है। और जब सिचुएशंस आते हैं तो फेस करने की और टीम को साथ लेकर चलने की क्षमता हमारे अंदर बहुत मायने रखती है। और जब स्वयं को मैनेज करने की बात करते हैं तो वहां पर ये दो चीजें होनी चाहिए, पावर टू विथड्रॉ, अपने इंद्रियों को अपने संयम में रखें, कब यूज करना कब नहीं करना, कब बोलना कब नहीं बोलना, एंड सेकेंड थिंग इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन नेगेटिव बातों पे क्या करें, उसको आउट कर दे, जो बातें हुई जैसी भी बातें हुई उस पर फुल स्टॉप लगा दे, ताकि हम प्रेजेंट में रहकर अभी मुझे क्या करना है हम उस पर फोकस कर सके। तो ये जो पावर से इसमें आपस में बहुत अच्छी इंटरकनेक्टिविटी है, ये दोनों आपस में पूरक हैं, ये दोनों आपस में पूरक हैं, ये दोनों आपस में पूरक हैं, और ये दोनों भी आपस में पूरक हैं। और ये सारे पावर को हमारे अंदर डेवलप करने के लिए, जैसा कि हमने सुना कि टॉलरेंस के पावर के लिए आपको लव चाहिए, फेस करने के पावर के लिए आपके अंदर साहस चाहिए, करेज चाहिए, आपके अंदर फियरलेसनेस चाहिए, ये सारी चीजें कहां से आएंगी, ये सारी चीजें कहां से आएंगी, मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन में हम बैठ के भाई हम मेरे अंदर फियरलेसनेस आ रहा है, फियर आत्मा के जो सात मूल गुण हैं, याद है आत्मा के जो सात मूल गुण हैं वो क्या है, के पी स्क्वेयर एल एच बी पी, के फॉर नॉलेज, पी फॉर प्योरिटी, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस एंड पी फॉर पावर। ये सातों गुणों को परमात्मा से जुड़कर अपने अंदर लाना है, बाकी सारे गुण इन्हीं सातों गुणों के डेरिवेटिव्स हैं। अगर आपने इन सातों गुणों को अपने में अपना लिया तो बाकी सारे गुण भी ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएंगे, और हर शक्ति को अपने अंदर भरना और उसे एग्जीक्यूट करना हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। तो चले मेडिटेशन करें। ओके, एक और बात यहां पे लिखा है, ये जो चार पावर से, दिस इज द डूइंग पार्ट, डिस्क्रिमिनेशन, डिसीशन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीम स्पिरिट, दिस इज द डूइंग पार्ट। हमारे कार्य क्षेत्र में और जो सिचुएशंस हम फेस करते हैं उसमें हमें इन सब चीजों की जरूरत है। और ये जो चार है, दिस इज द बीइंग पार्ट। हमें फोकस किस पे करना है, आज हम एक्शन कॉन्शियस हो गए हैं, राइट? लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है, स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है सोल कॉन्शियस बनना। सोल कॉन्शियस बनना मतलब लवफुल बनना, सोल कॉन्शियस बनना मतलब पीसफुल बनना, सोल कॉन्शियस बनना मतलब ब्लिसफुल बनना, सोल कॉन्शियस बनना मतलब नॉलेजफुल बनना। तो जब आपका बीइंग बहुत हेल्दी है, अच्छा है, तो डूइंग क्या होगा, ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो चलिए कमर सीधी करके बैठेंगे, थोड़ा बैक सपोर्ट नहीं ले तो अच्छा है। अपने आप को तैयार करें एक अंतर जगत की यात्रा के लिए। अपनी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए शक्तियों के स्रोत के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए। जीवन में सारा समय औरों को देखने, औरों को सुनने में चला गया। ये कुछ पल अपने आप से बातें करने के लिए। ये कुछ पल अपने पिता परमात्मा से बातें करने के लिए। ये मेरे जीवन के खास पल हैं। धीरे धीरे अपने विचारों को केंद्रित करें मस्तक के बीच। अपने आप को देखें, एक चमकता हुआ सितारा, एक प्रकाश का पुंज। और महसूस करें जैसे एक बल्ब की रोशनी फैलती है, ऐसे मुझ आत्मा का प्रकाश मेरे से फैल रहा है। मैं आत्मा असीम खजानों से संपन्न हूं। मेरे पिता परमात्मा ने मेरे अंदर अपने सारे गुण और सारी शक्तियों को भरकर भेजा है। याद करें अपने उस मूलभूत गुणों को। मैं शांत स्वरूप आत्मा, परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, मैं शांत रह सकती हूं। इट्स अ चॉइस। महसूस करें अपने अंदर छिपे हुए शांति को। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, आई एम अ लवफुल सोल। सबके प्रति मेरा प्रेम भाव कोई अच्छा है तो प्रेम, प्रेम इसलिए नहीं, मेरा प्रेम भाव इसलिए कि मेरा स्वधर्म है प्रेम करना। इट्स माय ओन नेचर टू लव। आई एम अ हैप्पी सोल। खुशी मेरा खजाना है। जीवन की कैसी भी परिस्थिति में उसमें छिपी हुई अच्छाई को देखते हुए, कल्याण को देखते हुए मैं खुश रह सकती हूं। खुश रहना और खुशियां बांटना, यही मुझ आत्मा का धर्म है। और जैसे जैसे ये गुण मेरे में आते जा रहे हैं, मेरे अंदर की सारी सुषुप्त शक्तियां जागृत हो रही है। अब मैं कैसी भी बात हो, कोई भी हो, उसके प्रति प्यार और क्षमा की भावना से उसकी बात को सहन कर सकती हूँ। कोई कैसा भी है, एक दरिया दिल बनकर मैं उनके साथ एडजस्ट कर सकती हूँ। अपने प्योर वाइब्रेशन से सामने वाले को परख कर अपने आप को सुरक्षित रख सकती हूँ। मन को परमात्मा से जोड़कर जो उनके हिसाब से सही है उस लेवल का निर्णय ले सकती हूँ। महसूस करें मेरी अंदर की शक्तियाँ जागृत होती जा रही है। I am a powerful soul. जीवन के प्रतिपल भगवान मेरे साथी है। क्या भी बात आ जाए मैं सामना कर सकती हूँ। सबके साथ मिलजुल कर हर समस्या का सहज समाधान कर सकती हूँ। मैं मास्टर हूँ अपनी इंद्रियों पर। मेरी इंद्रियां मेरे कर्मचारी। I choose when to use, when not to use. I am the master. बीती बातों पर फुल स्टॉप लगाकर प्रेजेंट में रह के मेरे टाइम और एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकती हूँ। आई एम पावरफुल। परमात्मा की असीम शक्तियाँ मुझ पर बरस रही है। ओम शांति।